कुछ तो था मेरी नायर के वजूद में जिसने मुझे उसे भूलने नहीं दिया है। पहाड़ और मेरा जीवन, किस्त 17। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पिथौरागढ़ में पिता की बेरोजगारी के चलते माँ को ही परिवार चलाने की जुगत करनी पड़ती थी। उसने हमारी एक मौसी से एक काले रंग की गाय खरीद ली थी ताकि घर की दूध की ज़रूरत भी पूरी हो और थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया जा सके। उन दिनों गाय 400 रुपये में मिली थी। गाय की माँ भरपूर सेवा करती। उसके लिए सिन्ने के पत्तों यानी बिच्छू घास का दलिया बनता। सिन्ने के पेड़ से तो हर पहाड़ी परिचित ही होता है, नहीं होता तो उसे परिचित करवा दिया जाता है, जैसे बड़े भाई ने पहली बार मेरा परिचय करवाया था। एक सुबह जबकि धूप खिली हुई थी और मैं कहीं खेलने निकलने ही वाला था, वह धूप में बोरा बिछा बैठा था और कोई किताब पढ़ रहा था। मुझे ज़्यादा देख वह उठ गया और उसने मुझे अपने पास बुलाया। सामान्यतः उसे मुझसे कोई सरोकार नहीं रहता था और मैं उसके बहुत कम काम आता था, इसलिए उसने बुलाया तो मैं उत्सुकता से उसके पास गया। वह उठकर एक झाड़ी के पास खड़ा हो गया। मैं पास पहुंचा तो उसने उसके पत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा इसे छूकर तो दिखा। किसी झाड़ी के पत्ते को छूना कौन सी बड़ी बात है, मुझे ये बहुत हल्का काम लगा और मैंने बिना सोचे पत्ते को हथेली में दबा दिया। पर अगले ही क्षण जैसे मेरी पूरी हथेली में कई सुइयां चुभने लगी हो, दर्द के मारे मैं बिलबिला उठा। उधर मैं दर्द में बिलबिला रहा था और उधर भाई पेट पकड़ कर हंस रहा था। सिन्ने के पत्तों से मेरा एक और बार सापका हुआ था, पर वह किस्सा बाद में। अभी मैं आपको अपनी सहपाठी मिनी नायर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि नाम से अंदाज लगाया जा सकता है, मिनी नायर तब कद में भी थोड़ी छोटी लड़की थी जो चौथी कक्षा में मेरे ही साथ पढ़ती थी। उसके पिताजी MBS में ही नौकरी करते थे। उनका परिवार सिंगल्स क्वार्टर्स जो कि एमबीएस कॉलोनी के लगभग एक छोर पर बने हुए थे मैं रहता था। मिनी और मैं अक्सर सुबह स्कूल जाते वक्त मिल जाते थे। उन दिनों स्कूल नज़दीक ही था और साथ में पैदल चलने का बमुश्किल 300 मीटर की दूरी साथ में पैदल चलने को बमुश्किल 300 मीटर की दूरी ही मिल पाती थी। लेकिन जल्दी ही स्कूल एक नई इमारत में शिफ्ट हो गया। अब मिनी और मैं ज़्यादा दूरी तक साथ साथ चलते। इस तरह साथ साथ चलते हुए हम दोस्त भी बन गए। उस उम्र में कक्षा का हर बच्चा दोस्ती होता है, पर मिनी के प्रति मैं अपने मन में थोड़े नाजुक जज्बात महसूस करने लगा था। मैं अपने पहनावे से उसे इम्प्रेस करने की भी कोशिश करता। हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म के रूप में हम नीले रंग की पैंट और सफ़ेद कमीज पहन सकते थे। सर्दियों में कमीज के ऊपर नीली स्वेटर पहनी जाती और ज़्यादा ठंड होने पर स्वेटर के ऊपर ब्लेजर या कोट पहना जा सकता था। उन दिनों मेरे पास न जाने कहाँ से एक काले रंग का कॉटरे का कोट आ गया था, जिसे पहनकर मैं खुद को किसी नवाब से कम नहीं समझता था। उस उम्र में भी दबंग दिखने के लिए मैं उस कोट की आस्तीन थोड़ी चढ़ाकर रखता था। एक बार साथ चलते हुए मिनी ने उस कोट की कुछ तो तारीफ कर दी, फिर क्या था, जब तक उसके रेसे रेसे अलग नहीं हुए मैंने तब तक वो कोट पहना। जब तक मिनी नायर साथ पढ़ती थी तब तक उसके लिए और उसके चले जाने के बाद उसे याद करने के लिए मेरी स्मृति में बहुत ज़्यादा किस्से न थे, पर एक घटना थी जो कभी नहीं भूली, उसके घर जाने की घटना। उसके घर जाने का कोई औचित्य न था, पर ईश्वर ने जब उसे मेरी स्मृति में रखने का फैसला कर ही लिया तो कोई क्या कर सकता था। क्योंकि माँ काली गाय की सेवा के लिए बहुत मेहनत करती थी, मैं हमेशा माँ की मदद करने के उपाय सोचता रहता। मुझे नए नए काम करने में मज़ा भी आता था। एक दिन जब माँ काली गाय के लिए आसपास कहीं से हरी घास काटने का मन बना रही थी, मैंने माँ से कहा, आज मैं घास काटने जाऊँगा। उन दिनों ठुलीगाड़ के दोनों ओर सरकारी ज़मीन पर बरसात के बाद उगी घास को कोई भी काट सकता था। बाद में तो MBS ने इस घास की भी नीलामी शुरू कर दी थी। मुझे घास काटने का अनुभव नहीं था, पर मैंने इससे पहले भी एक इस काम में माँ की मदद की थी। माँ ने मना किया, पर मेरी जिद के आगे उसकी न चली। उसे दूसरे भी बहुत से काम करने थे, अंततः मान ही गई। मैंने ऊपर वाले घर से मेरी ही कक्षा में पढ़ रही रेनू को आवाज़ लगाई और बताया कि मैं घास काटने जा रहा हूँ। मैं जानता था कि वह, अरे सुंदर रुक, मैं भी आती हूँ। कहेगी और मेरे पीछे चली आएगी। वह आ भी गई। हम ठुली गाड़ के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू हुए। जहाँ बड़ी बड़ी हरी घास दिखती है वहाँ हम रुक जाते। मैं माँ और काली गाय दोनों की आंखें एकदम मुलायम हरी घास डालकर उन्हें हैरान कर देना चाहता था। हरी घास खोजते खोजते हम कब MES के सिंगल्स क्वार्टर्स के सामने की ढलान पर पहुँच गए पता ही नहीं चला। मैं थोड़ा सुस्ताने के लिए ढलान लांग कर समतल पर पहुँचा तो मैंने पाया कि मैं ठीक मिनी नायर के घर के प्रांगण के आगे पहुँच गया हूँ। वह वहीं कुर्सी पर बैठी हुई कुछ खा रही थी। उसे पहचानते ही मैंने सबसे पहले अपनी पीठ पर बांधा हुआ डोका नीचे कर दिया ताकि वह देख ना सके। रेनू आदतन मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने उसकी ओर इशारा किया कि वापस चलते हैं, पर तब तक देरी हो चुकी थी क्योंकि मैंने मिनी नायर की आवाज़ सुनी। अरे सुंदर, अब उस ढलान में अगर मैं पीठ पर बंधा डोका उतार देता तो उसके लुढ़कने का भी खतरा था। वह लुढ़क कर सीधे गाढ़ के पानी में गिरता। मेरे पास उसे पीठ पर बांधे ही ऊपर जाने के सिवाय कोई चारा न था। इतने में मिनी की माँ भी बाहर आ गई। वह भी मुझे पहचानती थी। मिनी मुझे देखते ही दौड़कर मेरी ओर आई और मुझे उस तरह पीठ पर डोका बांध हाथ में आसी यानी दराती लिए देख हंसने लगी। अब कुछ किया ही नहीं जा सकता था। मैं शर्मो लिहाज को छोड़ अब इस ऊपर समतल में आ गया। पीछे पीछे रेनू भी आ गई। मिनी की माँ ने हमें अपने घर के अंदर बुलाया। हमने अपने डोके पीठ से उतार कर बाहर प्रांगण में ही रख दिए थे क्योंकि हम तब गांव के घरों जैसे पत्थर के घर में रहते थे। हमें MES का हर घर बड़े साहब के घरों जैसा लगता था। इसलिए रेनू और मैं दोनों मिनी के घर में भी लगभग सावधान की मुद्रा में पीठ को सीधा रखकर सकुचाहट से भरे बैठे हुए थे। मिनी की माँ ने हमें बहुत प्यार से इडली सांभर खिलाया। नारियल की चटनी भी थी साथ में। मैं लगभग हर वक्त भूख से भरा रहता था लिहाजा मुझे वह इडली सांभर बहुत स्वादिष्ट लगा। मिनी इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि मैं इस तरह उसके घर इडली खा रहा था। वह मुझे खाते देखती रही। इडली खाकर हम जल्दी ही वहाँ से चले गए। लौटते हुए रेनू ने मुझे टोका कि मैं बहुत सारी इडली खा गया था। वह नहीं जानती थी कि मुझे इडली खाने का ज़्यादा सुख महसूस नहीं हो रहा था, पर मुझे यूँ खाते देख मिनी के चेहरे पर उभरे भावों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। खा मैं रहा था और सुकून मिनी के चेहरे पर था। एक तरह से मिनी के घर में यूँ इडली खाना मनोवैज्ञानिक रूप से मेरे जीवन की एक बहुत अहम घटना होने वाली थी क्योंकि उसने मुझ में वह आत्मविश्वास भरा कि गांव वाले पत्थर के घर में रहने वाले गरीब परिवार का होने के बावजूद MES के बड़े लोगों के घरों में रहने वाली मिनी की नज़र में मैं इतना अहम था कि उसकी माँ ने हमें घर के भीतर बैठाकर इतने प्यार से इतनी सारी इडली खिलाई। हो सकता है कि इस घटना ने मेरा खुद पर जो भरोसा जगाया, बाद में बड़ा होने पर इलाहाबाद में सेना में अफसर बनने के लिए SSB का इंटरव्यू देते वक्त उसी आत्मविश्वास का कोई अंश ही रहा हो जिसे इंटरव्यू करने वालों ने देख लिया हो और यही 55 उम्मीदवारों में से 2 सफल प्रत्याशियों के रूप में चुन लिए जाने का आधार बना हो। मामला मनोवैज्ञानिक है। कुछ तो था मिनी नायर के वजूद में ऐसा जिसने मुझे उसे आज तक भूलने नहीं दिया है।